आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने भारत की देसी दिफाई सलाहियतों और मेक इन इंडिया की ताकत का मुजाहरा किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारत दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए कोई भी तरीकेकार इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। माली साल 2024-25 की आखिरी सहमाही में भारत की हकीकी मजमू घरेलू पैदावार का तखमीना बढ़कर 7.4% होने की तवक्को है। रूस ने पाकिस्तान की उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह दावा किया गया है कि मॉस्को कराची में फौलाद के मिल्स मुश्तरका तौर पर कायम करने का मंसूबा रखता है। और खेलकूद में जनूबी कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रनर गुलवीर सिंह और हाई जंपर पूजा ने तलाई तमगे हासिल किए। नंदिनी अगसारा ने भी हेप्टेथलॉन में सोने का तमगा हासिल किया। और बैडमिंटन में सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में तकरीबन 47,600 करोड़ रुपए मालियत के 15 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने चुन्नीगंज और नयागंज के दरमियान कानपुर मेट्रो के नए कॉरिडोर का झंडी दिखाकर आगाज भी किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उजागर किया कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये एक फख्र की बात है कि ये दिफाई शोबे की खुद किफालत में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में बेटियों का गुस्सा और दर्द महसूस किया है और ये कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बहुत से मराकज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है।
पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी भी इस बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया है कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी किरदार अब मजीद खेल नहीं सकते और ये कि दुश्मन से फैसला कुन तरीके से निपटा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की देसी दिफाई सलाहियतों और मेक इन इंडिया की ताकत का दुनिया के सामने मुजाहरा किया है। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार के रोहतास जिले में 48,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई करता है तो उसे इसके नतायज भुगतने होंगे और उसे शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए कोई भी तरीकेकार इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। वजीर दिफा ने कहा कि पूरी दुनिया अब अपने शहरियों को दहशतगर्दी से तहफ्फुज फराहम करने के भारत के हक को तस्लीम कर रही है।
मैं बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के उन मरकजों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए जो उसकी सरजमीन पर उसकी ही सरपरस्ती में सरगर्म अमल हैं। उन्होंने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों को भारत के हवाले करने पर जोर दिया। उन्होंने आज गोवा के साहिल के करीब भारत के पहले देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत पर अफसरान और अमले के अफराद से खिताब किया। वजीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौज कार्रवाई नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ठोस कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई गलत और गैर इखलाकी हरकत करता है तो उसे इस मरतबा भारतीय बहरिया के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह बात समझने की जरूरत है कि दहशतगर्दी के खतरनाक खेल के लिए अब वक्त खत्म हो गया है जिसे वो आजादी के बाद से खेलता आ रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान की जानिब से हालिया गोलीबारी से मुतासिर जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों के लिए एक खसूसी राहत पैकेज का ऐलान किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा 90,000 जेर जमीन बंकर्स के अलावा सरहद पर रहने वाले लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने और मदद करने के लिए इजाफी इकदाम किए जाएंगे। गोलीबारी में हलाक होने वाले अफराद के खानदान के अराकीन को तकर्रर नामे तकसीम करने के बाद पुंछ में एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस वक्त इंतजामिया मुतासर इलाकों में हुए नुकसान का अंदाजा लगा रहा है और उन्हें यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत मुतासर होने वाले अफराद के कुनबों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी। दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने के भारत के पुख्ता अजम के इजहार के तौर पर 7 कसीर जमाती पार्लिमानी वफूद अपने बैरूनी दौरों के दौरान आला सतही बातचीत में मसरूफ अमल हैं। डेनमार्क के दौरे पर गए कुल जमाती वफद जिसकी सरबराही बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं ने आज डेनमार्क की पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन क्रिस्टीन फ्रिसबाक और डेनमार्क के रुकने पार्लियामेंट ट्रेन पेटोमार्क से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जनाब प्रसाद ने कहा कि डेनमार्क ने दहशतगर्दी के मसले को समझा और इसके बारे में उनके नजरियात से आगाह किया। जनाब प्रसाद ने कहा कि डेनमार्क वो पहला मुल्क था जिसने भारत के साथ इजहार यकजहती किया था। जनाब प्रसाद ने मजीद कहा कि डेनमार्क दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की पोजीशन को समझता है।
Mr. Christian Bach, a very senior parliamentarian on the Foreign Affairs Committee also, made a wonderful meeting with him. He understood the problem of terrorism, conveyed his views, and what we appreciate is Denmark was the first to convey solidarity. He is a leader of great stature, has worked in the UN also, quite understood India's position.
वहीं डीएमके रुकने पार्लियामेंट कनिमोई की क्यादत वाला एक और कुल जमाती वफ्द फिलहाल लातविया के दौरे पर है जहां उसने राजधानी रिगा की नेशनल लाइब्रेरी में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर खिराज अकीदत पेश किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के मसनूई जहानत के मिशन में नुमाया तरक्की हुई है। नई दिल्ली में इंडिया एआई मिशन, मेक एआईएन इन इंडिया और मेक एआई फॉर इंडिया तकरीब से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का टेक्नोलॉजी को जमहूरी तर्ज पर ढालने का नजरिया बिल्कुल वाज़ेह है, जिसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी महज चंद हाथों तक महदूद न रहे बल्कि इसे समाज के एक बड़े तबके तक काबिले रसाई बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों तक टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी टेक्नोलॉजी को जमहूरी तर्ज पर ढालने के उसूलों का एक अहम हिस्सा है। इस मौके पर जनाब वैष्णव ने एआई कंप्यूट सर्विसेज एम्पैनलमेंट के दूसरे मरहले का भी ऐलान किया जिसके जरिए स्टार्टअप्स, मुहक्किकीन और तलबा के लिए मजीद 16,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी दस्तयाब कराई जाएगी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब वैष्णव ने बताया कि एम्पैनलमेंट के पहले मरहले में तकरीबन 18,000 कंप्यूट फैसिलिटी दस्तयाब कराई गई जिसके बाद ये सहूलत बढ़कर तकरीबन 34,000 जीपीयूज तक जा पहुंची।
पहले राउंड में करीब 18,000 जीपीयूज एम्पैनल हुए और आज सेकंड राउंड में करीब 16,000 जीपीयूज एम्पैनल हुए यानी 34,000 जीपीयूज अवेलेबल हो चुके हैं। साथ ही साथ 367 डेटा सेट एआई कोश में अवेलेबल है जो कि हमारे रिसर्चर्स, मॉडल डेवलपर्स सबके लिए अवेलेबल है जिससे कि मॉडल को भारत की परिस्थितियों के अनुसार भारत की कल्चरल, लिंग्विस्टिक इन सब सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जा सके।
तकरीब के दौरान मरकजी वजीर ने भारत के फाउंडेशन मॉडल्स की तामीर के लिए स्टार्टअप्स के नाम का ऐलान किया और 14 सी हैकाथन के फातिहीन को इनामात से नवाजा। तकरीब के दौरान इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर प्रोफेसर अजय सूद ने कहा कि भारत मसनूई जहानत एआई के शोबे में अपने मुस्तकबिल की तामीर करते हुए तरक्की की राह पर गामजन है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। माली साल 2024-25 में मुल्क की हकीकी मजमुई घरेलू पैदावार जीडीपी में 6.5% के इजाफे की तवक्को है। माली साल 2024-25 की आखिरी सहमाही में हकीकी मजमुई घरेलू पैदावार में 7.4% के इजाफे का अंदाजा लगाया गया था। शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज की वजारत के मुताबिक माली साल 2024-25 में कम से कम मजमुई घरेलू पैदावार की शरह नमो में 9.8% का इजाफा सामने आया है। गुजश्ता माली साल के दौरान 9.4% की کھینچ رہے نمو کے ساتھ تعمیراتی شعبہ معیشت کا سب سے بڑا محرک تھا۔ مالی سال 2024-25 کے دوران سرکاری انتظامیہ دفاع اور خدمات کے دیگر شعبے میں 8.9% کی شرح کا تخمینہ لگایا گیا۔ آیوش کے وزیر پرتاپ راؤ یادو نے گمراہ کن اشتہارات اور ادویہ کے منفی رد عمل کے معاملات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے آج آیوش سرکشا پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل روایتی ادویہ کے شعبے میں صارفین کے تحفظ اور ضابطہ جاتی نگرانی کو مستحکم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ آیوش سرکشا پورٹل کے آغاز سے ہم شہریوں اور پیشہ ور افراد کو یکساں طور پر بااختیار بنا رہے ہیں تاکہ وہ آیوش نظاموں کے تحفظ اور یکجہتی میں فعال شراکت دار بن سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پلیٹ فارم گمراہ کو اشتہارات کے خلاف ایک نگرانی کرنے والا نگران ٹاپر بنے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صرف محفوظ اور معیاری مصنوعات ہی عام آدمی تک پہنچیں۔ بی جے پی کی قیادت والی دلی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد سے آج اپنے 100 دن پورے کر لیے ہیں۔ دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کابینی وزراء کے ساتھ آج ایک 22 صفحے کی ورک بک جاری کی جس کا عنوان تھا کام کرنے والی سرکار 100 دن سیوا کے۔ یہ ورک بک یمنا کے احیاء، آیوشمان بھارت کے نفاذ، وے وندنا یوجنا، ٹینکروں کے ذریعے پانی کی فراہمی میں اضافہ کرنا اور ای بس کی خریداری سمیت دلی سرکار کے ذریعے کیے گئے مختلف اقدامات اور پروجیکٹوں کو اجاگر کرتی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کی وجہ سے شدید بارش شمال مشرقی ریاستوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اروناچل پردیش میں بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے 5 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جن میں نشیبی، سوبنسری، مغربی کامینگ، مغربی سیانگ، لوہت اور چانگلانگ شامل ہیں۔ روس نے پاکستانی میڈیا رپورٹس کے ان حالیہ دعووں کو جعلی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ماسکو اسلام آباد کے ساتھ معاشی روابط بڑھا رہا ہے اور کراچی میں فولاد کے کارخانے قائم کرنے کا مشترکہ منصوبہ رکھتا ہے۔ یہ رپورٹس 13 مئی کو پاکستان کے وزیر اعظم کے خصوصی معاون ہارون اختر خان اور روسی ایلچی ڈینس نزیروف کے درمیان ہوئی ملاقات کے بعد سامنے آئی۔ ماسکو نے $1 ارب کے کسی بھی سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کو سختی سے مسترد کر دیا اور الزام لگایا کہ پاکستان میں موجود عناصر پاکستان اور پاکستان مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد کیمپوں کو تباہ کیے جانے کی بھارت کی کارروائی آپریشن سندور کے بعد خاص طور پر بھارت روس مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سینئر روسی افسر نے ان رپورٹس کو مبالغہ آرائی قرار دیا اور کہا کہ ان کا مقصد ان تعلقات کو سنسنی خیز انداز میں پیش کرنا ہے جو اس نوعیت کے نہیں ہے۔ ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں آج بھارت کا دن اچھا رہا، جہاں گلبیر سنگھ نے اپنا دوسرا سونے کا تمغہ جیت کر ملک کے تمغوں کی فہرست میں اضافہ کیا۔ گلبیر نے 2015 کی سابقہ کارکردگی سے آگے بڑھ کر 13:24 اور 78 ملی سیکنڈ کے ریکارڈ وقت میں مردوں کی 5000 میٹرز کا خطاب جیتا۔ اس سے پہلے انہوں نے مقابلوں کے پہلے دن 10000 میٹرز مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ خواتین کے ہائی جمپ مقابلے میں 18 سالہ پوجا نے بہترین 1.89 میٹر کی سیزن کی بہترین کارکردگی کے ساتھ خود اپنا انڈر 20 کا قومی ریکارڈ توڑتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتا۔ اس طرح وہ بابی ایلیورسس کے بعد ایشین چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ دوسری جانب نندنی اگسارا نے 5941 پوائنٹس کے ساتھ خواتین کے ہیپٹیتھلون میں بھارت کے لیے تیسرا سونے کا تمغہ جیتا۔ فی الحال تمغوں کی فہرست میں بھارت 18 تمغے جیت چکا ہے، جن میں 8 سونے کے، 7 چاندی کے اور 3 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ وہ چین کے بعد دوسرے مقام پر ہے۔ چین 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جن میں سونے کے 15، چاندی کے 8 اور کانسے کے 3 تمغے شامل ہیں۔ بیڈمنٹن میں مردوں کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے ملیشیا کے اعلی درجے کے کھلاڑی گو زیفی اور نور عز الدین کی جوڑی پر جیت حاصل کر کے سنگاپور اوپن کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ بھارتی جوڑی نے سنگاپور انڈور اسٹیڈیم میں محض 39 منٹ میں عالمی نمبر 1 جوڑی کو سیدھے سیٹوں میں 21-17, 21-15 سے شکست دی تھی۔ یہ اس سیزن کا ان کا تیسرا سیمی فائنل ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور نے پوری دنیا کے سامنے بھارت کی دیسی دفاعی صلاحیتوں اور میک ان انڈیا کی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ مالی سال 2024-25 کی آخری سہ ماہی میں بھارت کی حقیقی مجموعی گھریلو پیداوار کا تخمینہ بڑھ کر 7.4% ہونے کی توقع ہے۔ روس نے پاکستان کی ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ماسکو کراچی میں فولاد کے ملز مشترکہ طور پر قائم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اور کھیل کود میں جنوبی کوریا میں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں رنر گلبیر سنگھ اور ہائی جمپر پوجا نے طلائی تمغے حاصل کیے۔ نندنی اگاسارا نے بھی ہیپٹیتھلون میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔